पिछली बार हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये सत्य कुंती महारानी बता रही है कि आप किसी का द्वेष नहीं करते, और ऐसा एक देखा गया है, अनेक भक्तों ने इस सत्य के ऊपर अपने अपने विचार, अपने साक्षात्कार बताए हैं। तो आगे चर्चा को बढ़ाते हुए एक वाक्य यहां पर प्रभुपाद का है, मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवत भक्ति तो विशेष कृपा प्राप्ति के लिए की जाने वाली चाटुकारिता, मतलब फ्लैटरी, किसी की मिथ्या स्तुति वो है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आज हम हमारी चर्चा आरंभ करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम केवल इसी के लिए लिया जाता है कि वो दूसरों की स्तुति करता है, दूसरों की प्रशंसा करता है, तो मनुष्य समाज में उसका क्या महत्व है या किस दृष्टि से हम देखते हैं? अधिकतर हम उसको नापसंद करते हैं। हालांकि जिसको हमारे राजनीतिक सर्कल में चमचागिरी, एक बहुत ही स्ट्रीट लैंग्वेज का शब्द है, लेकिन किसी को किसी का चेला या चमचा ऐसे कहेंगे तो वो अपमान समझा जाता है। हालांकि आज पूरा बिजनेस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सब जगह पर यही तो बात दिखाई देती है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि मनुष्य अपने आप को कोसते हुए, अपने आप को अंदर से घृणा करते हुए किसी व्यक्ति के सामने हाजी हाजी करना, ये भी एक शब्द होता है, हाजी हाजी करना। हाजी मतलब क्या कि बॉस जो कहेगा वो हमेशा सही। कई जगह पर तो अगर आप ऑफिस में जाकर पूछेंगे कि यहां की मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, तो नए व्यक्ति को बताया जाता है कि दो ही रूल हैं इस कंपनी में। रूल नंबर वन, द बॉस इज ऑलवेज राइट। पहला रूल ऐसा है कि बॉस सदैव सही होते हैं, कभी गलती नहीं करते। और दूसरा रूल क्या है फिर? दूसरा ऐसा है कि अगर कभी आप भूल जाओ तो रिमेंबर रूल नंबर वन। अगर किसी घटना से या किसी से आपको इसका विस्मरण हो तो फिर एक बार रूल नंबर वन पढ़ते रहना। मतलब यहां पर और कोई, या जैसे पहले हमारे रघुनाथ प्रभु यहां पर थे तो उन्होंने एक मुझे एक छोटा सा एक साइन बताया था, उनके टेबल पे रखा था उन्होंने मजाक के तौर पर, उसमें लिखा था इंग्लिश में, बी लॉयल टू योर बॉस, अपने बॉस से निष्ठावान रहो, द नेक्स्ट वन मे नॉट बी ए नाइस पर्सन। अपने बॉस से निष्ठावान रहो क्योंकि जो अगला बॉस रहेगा वो शायद इसके जैसा अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने लॉयल्टी नहीं दिखाई तो ये आपको निकाल देगा। तो कई बार कभी कॉलेज के युवक या कभी बड़े बुजुर्ग लोग भी मन में ये प्रश्न पूछते हैं कि ये रोज हरे कृष्ण करना और भगवान के सामने नाक अपना जमीन पर लगाना और इतनी दंडवत मारते हैं आप लोग, हरे कृष्ण मंदिर में जाओ तो कभी कभी सुबह समझ में नहीं आता कि कौन किसको दंडौत मार रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, और लोग यहां वहां देखते रहते हैं कि ये क्या हो गया सडनली। तो ये क्या है, आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी का नाम जप रहे हैं, कुछ मिलेगा इसलिए ना। कभी कभी लोग ऐसे एक प्रकार का आरोप करते हैं, क्या मिलता है आपको। हमारे भक्त लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कोई पूछता है क्या मिलता है आपको इससे, बोले कुछ नहीं मिलता। एक हमारे डिवोटी भी राजस्थान मारवाड़ प्रदेश के हैं, तो उन्होंने किसी से ट्रेन में मिलेंगे कोई बिजनेसमैन, तो उन्होंने कहा मैं भी मारवाड़ प्रदेश का ही हूँ, और मैं बोले हम भी मारवाड़ी हैं। तो उन्होंने कहा ये आपको गीता बांटते तो कितना मिलता है कमीशन। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये कमीशन के लिए नहीं करते, हम तो गुरु महाराज की सेवा के लिए करते। बोले आप राजस्थान के हो ना, तो बोला हाँ, और कमीशन नहीं लेते आप, बोला नहीं, बोला हो ही नहीं सकता। मतलब उसने गीता ली थी और जिस खूबी से उस भक्त ने उस गीता उसको बेची थी या बांटी थी, तो इसलिए प्रभुपाद ने बुक सेलिंग करके नहीं बताया उसको। उन्होंने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, हम बांटते हैं उसको। तो ये दो कार्य किसी भौतिक स्वामी बॉस पति पत्नी या कोई भी व्यक्ति जिससे मुझे कुछ चाहिए उसके सामने अपना सर झुकाना, उसके सामने उसकी हाजी हाजी करना, और विग्रह के सामने वही करना, वो तो दोनों में क्या अंतर है। प्रथम बात तो ऐसी है कि इस जगत में बहुत रेयर, अति दुर्लभ कोई ऐसे उदाहरण दिखते हैं जिसमें लोग प्रेम से किसी के सामने हाजी हाजी करते हैं। एक बार की बात है, मैं वीटी सेशन सीएसटी पे गया था किसी को, किसी भक्त को रिसीव करने के लिए, और दो वर्दी वाले, वीटी के आसपास बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों के लिए होटल है, तो ये व्यक्ति शायद पूना से आते थे और हमेशा उसी होटल में रुकते थे, तो उनका पूरा एग्रीमेंट था वो। तो वो दो लोग जिनको ये डेक्कन क्वीन आती है 10 बजे के आसपास, तो एक ने कहा वो वही आ रहा है क्या आज भी, बोले हाँ वही आ रहा है। तो एक और दो गाली दी उन्होंने कि क्यों हमेशा इसी समय आता है, अब इसके लिए मुझे डोंबिवली से जल्दी आना पड़ा। नॉर्मली उनका टाइमिंग अलग होता है, लेकिन 10 बजे आज पहले ऑफिस में जाओ, वहां कुछ काम करो, फिर स्टेशन पे आओ। और ये मैं सुन रहा हूं कि कितनी गंदी गाली देते हुए वो उसको उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसको स्टेशनरी चाहिए, फिर इसको पानी लगता है, इसको ये लगता है। और अचानक ट्रेन तभी आ गई और वो आ गया, आ गया। और जैसे वो आ गया तो एकदम आइए सर, आइए सर। और तो मैंने कहा बाप रे, एक 2 मिनट पहले इनका रवैया कैसा था और अब भाई सडनली ऐसे हो गया। और उस व्यक्ति के चेहरे पे कुछ नहीं था, उसको लगा कि बिजनेस एज यूजुअल, मैंने फोन किया था सामान लेने के लिए, कोई आ जाओ तो आ गए। इसी का मतलब ये हो गया कि मनुष्य को अगर कोई मुझसे कहेगा कि देखो ये आदमी आपके सामने कहता है कि आप बड़े अच्छे प्रवचनकार हो, लेकिन कल मालूम है क्या बोल रहा था वो, क्या बोल रहा था, बोले ये तो एकदम भद्दे हैं, एकदम बेकार व्यक्ति है। तो मैंने कहा अरे मुझे तो नहीं लगा ऐसे। तो मनुष्य हम इसमें फंस सकते हैं, हमको फंसाना, मनुष्य को फंसाना बड़ी आसान बात है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि लोग जानते हैं कि ये मेरे सामने जो बोल रहा है ये सरासर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरी स्तुति करने के लिए बोल रहा है, मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि चलो दे ही देते हैं, क्या है अभी। मतलब इसका सबसे इनोसेंट रूप ये होता है जब कोई छोटा बालक अपने माँ या पिता से आके कहेंगे कि मम्मी, तो समझती है कि इस प्रकार का सुर लगा है वो, मतलब कुछ चाहिए। मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं ऐसे इस टोन से बोलता था तो पिताजी बोलते क्या चाहिए बोल पहले, मतलब जस्ट टू सेव टाइम, आपको आगे बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्या चाहिए बोलो, अगर होता दूंगा नहीं तो ना बोलूंगा। तो ये ट्रेनिंग हमको बचपन से मिलती है और एक प्रकार का ये कंडीशनिंग हो जाता है कि भगवान के सामने जाकर फिर लोग भी वही करते हैं। एक उपन्यास लिखा था किसी ने, मुझे ये अनुभव ये उदाहरण हमेशा मेरे मन में एकदम बैठ गया है वो, कि उस व्यक्ति को उसका बॉस ऑफिस में बहुत ताड़न, बहुत दूषण, बहुत हमेशा गलत शब्द, अरे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू एक काम ठीक नहीं करता। वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता था, बॉस के सामने एकदम चुप। और उसने कहीं से भी एक बॉस का फोटो निकाल के लिया था, एक वो उसने फ्रेम किया था एक लकड़ी के फ्रेम में। फिर वो अपने, ऐसा कोई शहर की बात नहीं है, किसी मेट्रो नहीं है, छोटा सा टाउन, उस कचेरी की बात है, उस कार्यालय की। तो उसके घर के सामने एक छोटा सा जंगल जैसा एरिया था, तो वहां पर जाकर वो एक पत्थर पे वो फोटो रखता था। और सुबह से बॉस ने उसको जो भी कुछ गाली दी है वो थोड़ा और मिर्च मसाला डालकर उसी को गाली देता था कि तू निकम्मा है, तू आज तक कुछ बात नहीं सीखा है। और बाद में वो इतना ऐसा वर्क्ड अप, इतना हाइपर होता था वो, फिर वो लास्ट चीज मतलब वो एक बैग में से एक चप्पल का हार निकालता था, जो रास्ते में पड़ी होती है चप्पल सैंडल वगैरह, उसका उसने एक हार बनाया था और वो उसको पहनाता था वो। दैट वॉज हिज रिलीफ। उसके बाद सारा स्टीम चला गया। आप लोग यहां पे जो बॉस हो ध्यान में रखना, बहुत डिफिकल्ट है बॉस होना, सामने कोई बोलेगा नहीं कुछ, लेकिन ये हो सकता है शायद। तो वो एक्सरसाइज 15-20 मिनट ऐसे पूरा अपना, ये तो पूरा रजोगुण हो गया ना। शास्त्र कहता है कि किसी को दूषण देना, ये करना, अगर उसमें भगवत सेवा का कोई एलिमेंट नहीं है तो पैशन मतलब ऐसा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है। नवयोगेंद्र महाराज प्रभुपाद के एक सिद्धहस्त सन्यासी प्रचारक, बहुत यशस्वी प्रचार करते हैं जम्मू कश्मीर एरिया में, अफ्रीका में भी। वो नए थे, एक 18-19 वर्ष के बालक, युवक, बालक नहीं युवक, और अच्छे परिवार से थे वो। तो उनके परिवार ने भी कहा था कि आप स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं, अच्छा है। तो ऐसा नया एकदम होनहार बालक युवक आ गया, तो उनको प्रभुपाद का रूम के लिए पर्सनल असिस्टेंट और गार्ड के रूप में रखा गया कि यहीं पे खड़े रहना। तो एक दिन प्रभुपाद ने कुछ कंस्ट्रक्शन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और मनी मैनेजमेंट, ऐसे कुछ 2-3 चीजें थी जिसमें प्रभुपाद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर किसी भक्त ने गलती की है तो उसको बहुत भला बुरा उल्टा सीधा सुनने को मिलता था। तो ऐसे किसी मैनेजर ने को जाके बताया कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है, ये इतना पैसा एक्स्ट्रा गया है, कुछ हो गया है। और प्रभुपाद जी ने जो उसको फायरिंग देना चालू कर दिया, वो जितना डरा नहीं होगा इतना ये नवयोगेंद्र महाराज जो बाहर खड़े थे वो डर गए कि ये क्या हो रहा है, अभी तक मैंने कहीं सुना नहीं था। हम तो सोचते थे कि प्रभुपाद मतलब एक कोई फूल दे रहे प्रेम से, या कोई केक, कोई कुकीज दे रहे हैं, हरे कृष्णा कैसे हैं आप, तो ये तो अलग ही पहले अनुभव सुना उन्होंने। और उन्होंने थोड़े झांके देखा तो प्रभुपाद ऐसे, प्रभुपाद की से तर्जनी ऐसे हिलती थी अगर कुछ प्रॉब्लम होता था तो। मुझे रिपोर्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो वो जो था मैनेजर, उसने अपनी गलती मान ली और सर नीचे किए चुपचाप चला गया। और उन्होंने कहा अभी भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी प्रभुपाद अंदर नहीं बुलाए। नॉर्मली ऐसे होता है अगर किसी ने गलती की है और उसको उसको बॉस ने बोला निकल जाए यहां से अभी वो काम के लेकर, फिर दूसरा कोई आके बोलता है सर मुझे वो परमिशन चाहिए थी, तो उसको मालूम है मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो गर्मी है अभी तक पूरी अगर गई नहीं है तो थोड़ी इसके ऊपर आ जाती है ना। लोग सोचते थोड़ा थोड़ा एक मैं 10 मिनट के बाद आऊं, ऐसे ही पूछते हैं लोग। तो ये भी सोच रहे थे कि अभी इतने गर्म हो गए प्रभुपाद तो अभी, और अचानक प्रभुपाद ने बुला लिया, एक थोड़ी सी बेल थी ऐसा कुछ था, बोले अभी तो मर गए, अभी तो क्या होगा मालूम नहीं। वहां गए अंदर, प्रभुपाद जैसे हिमालय पर्वत जैसे एकदम शांत, और कुछ पूछा उन्होंने आप कहाँ से हैं और आपको सब प्रसाद वगैरह सब ठीक है ना, और कुछ विनोद हास्य की बात हो गई तो प्रभुपाद जैसे एक निरागस निष्पाप बालक की तरह ऐसे सुंदर हंसने लगे। ये कहने लगे कि अगर वो गुस्सा होते थे तो आई कुड हैव अंडरस्टूड कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो एकदम परिवर्तन दिखाई दिया तो पता ही चला नहीं कि ये कैसे एक दो मिनट पहले इतने गर्म और अभी एकदम अलग पहलू उनका। तो बोले कई साल लगे मुझे समझने में कि नॉर्मली प्रभुपाद ने लोगों को अपने पास बुलाया और एकदम कोई मामूली बॉस, कोई मामूली प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे कोई प्रोजेक्ट चलाता है वैसे इसको उनको चलाया, लेकिन सारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स की जो का जो फाउंडेशन था वो था कृष्ण सेवा। कृष्ण की सेवा के लिए प्रभुपाद क्रोध को भी नियोजित करते थे, कृष्ण की सेवा के लिए प्रेम भी क्रोध भी सब कुछ। तो ये समझना बड़ा कठिन है। तो इसलिए एक सुंदर उदाहरण यहां पर दिया जाता है। हम लोग एक भगवद गीता के एक बेसिक पॉइंट से शुरू करेंगे इसको समझना। मेरा पहला प्रश्न है आप सबके लिए, भगवान के पास जाकर मांगना। कोई कहेगा अरे सुनो मेरे पास मन में पूरे भौतिक डिजायर्स हैं। कभी कभी डिवोटीज एकदम ऐसे कैंडिडली बोलते नहीं 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 मेरे में बहुत भौतिक डिजायर है, सो मेनी मटेरियल डिजायर्स, मैं क्या करूं। भगवान के पास जाके मांगू, राधा गोपीनाथ से कहूं कि भाई प्रभु कुछ दे दा दो, कुछ दे दो। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कृष्ण के पास जाकर मांगना, सीधा जाके मांगना कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। कृष्ण के पास जाकर मांगना ये कौन से कार्य से श्रेष्ठ है कि ये सबसे घटिया कार्य है? क्या समझते हैं आप लोग? टू डिमांड समथिंग फॉर कृष्ण फ्रॉम कृष्ण इज इट बेटर देन समथिंग? तो वो समथिंग क्या है? हाँ वेरी गुड, माधवन प्रभु कहते हैं देवताओं के पास जाकर मांगना उससे तो ये अच्छा है। और कुछ? हाँ नहीं नहीं भक्ति तो ठीक है, भक्ति मांगना तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान के पास जाकर कोई भौतिक वस्तु मांगना ये कौन सी वस्तुओं से श्रेष्ठ समझा जाता है? तो एक मीनिंग हो गया देवताओं के पास जाकर मांगने से भगवान के पास जाकर मांगना अच्छा है। किसी व्यक्ति से मांगना, बोलिए। और सबसे वर्स्ट है अपने बलबूते पर कुछ मांगना या अपने बलबूते पर करना, लोगों को कहना कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, ये तो बहुत ही डरावनी बात है। चोरी करना या ये तो उसके नीचे तो जितना जाओ उतना। तो वेदों में कहा गया है कि अपने बल पर जो आदमी समझता है कि मैं अपना, आजकल बुक्स निकलती है ना आप अपनी तकदीर बनाओ और वो सब बोगस गिरी, तो उससे क्या होता है हमारा अपने आप में जो मिथ्या अहंकार का जो विश्वास है वो बढ़ते जाता है। और कई लोग हैं जो अपने आत्मविश्वास पर कुछ करते हैं फिर बाद में उसमें निष्फल होते हैं, अपयश होते हैं, अपयश प्राप्त करते हैं, फिर कभी उठ नहीं सकते वो। कई साइंटिस्ट समझते हैं पानी नहीं आ रहा है, हम बादल को ये करके क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, सीड मतलब बीज, हम बादल बनाकर पानी डालेंगे, तो वो कहां कर सकते हैं? वो जहां पर पहले बादल हैं वहीं पे कुछ कर सकते हैं, जहां पर सूखा पड़ा है वहां पे एक बूंद पानी नहीं निकल सकता। तो साइंटिस्ट फिलोसोफर्स अधिकतर कलयुग के जो लोग हैं वो ऐसे अपने आप को आई एम ए सेल्फ मेड फिलोसोफर, आई एम ए सेल्फ मेड इन्वेंटर ये समझते हैं। उनसे अच्छे वो लोग हैं जो किसी देवता के पास जाते हैं। ये वेदों में बताया गया ऐसे। क्यों वेदों में देवताओं की पूजा के बारे में वर्णन किया गया है? कि चलो कम से कम आपको ये तो समझ में आएगा कि मनुष्य सब कुछ नहीं है, इसलिए हमारे शास्त्र में है पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास जाओ, सुंदर पत्नी चाहिए उमा देवी के पास जाओ, सुंदर पति चाहिए शिवजी की उपासना करो। इससे व्यक्ति कम से कम किसी एक हायर पावर में विश्वास रखता है। उनसे भी श्रेष्ठ क्या है? उनसे श्रेष्ठ वो है जो श्री कृष्ण के पास जाकर कहता है कि भगवान कुछ हमें दिला दो, अर्थात ऐसे मांगने पर भगवान तुरंत दे देते, जैसे कोई मशीन होता है उसमें एक कॉइन डाल दिया और अंदर कुछ होता है गड़गड़ गड़गड़ गड़, और सामान आ गया बाहर, ऐसे नहीं होता। श्रील प्रभुपाद यहां पर बहुत सुंदर इसका विश्लेषण करते हैं। पहले जो सेकेंडरी पॉइंट उसको पहले चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान की कृपा का द्वार नहीं, आर्थ, आर्थ का अर्थ है ये हॉस्पिटल जितने पेशेंट्स हैं उनको सब आप आर्थ बोल सकते हैं कि लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ये है, वो है। ऐसे ऐसी अवस्था में अगर उसे कहा जाए कि भगवान का नाम लो तो 99% वो इसलिए ले रहा है कि भगवान थोड़ा दुख कम करो, उसको आर्थ कहा गया है। गरजमंद, अर्थ मतलब उसको कुछ चाहिए, गरजमंद का अर्थ होता है जिसको पैसा चाहिए, अर्थार्थी। अर्थ का अर्थ होता है यश भी होता है भौतिक जगत में, लेकिन ज्यादा करके पैसा। जिज्ञासु, जिसको केवल एक बौद्धिक जिज्ञासा है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। और ज्ञानी, ज्ञानी है जो वो जानता है कि नहीं नहीं भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसे मालूम नहीं कैसे ठीक से करते हैं लेकिन उसे यह पता है कि भगवान की उपासना करनी चाहिए। ये चार लोग हैं ना, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, उनके बारे में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि ये सुकृति लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं। मतलब अपने पर विश्वास नहीं रखना, देवताओं के पास नहीं जाना और श्री कृष्ण के पास जाकर मांगने से भगवान कहते हैं कि अरे आप तो बड़े पुण्यवान हो। तो श्री कृष्ण के पास आना ये कोई चाटुता या कोई चमचागिरी नहीं है, पुण्य चाहिए उसके लिए। बिना पुण्य के कोई श्री कृष्ण के सामने आकर नहीं मांग सकता। तो ये जो चार लोगों ने मांगा है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान पहले देखते हैं कि किसकी कौन कितना सही हकदार है। अगर किसी को पैसा चाहिए, अगर किसी ने एक गीता ले ली है या एक कभी प्रसाद के लिए कुछ स्पॉन्सरशिप दिया है या कुछ ना कुछ दान किया है, तो भगवान आपका दान नहीं देखते, उसके पीछे जो भावना है वो देखते हैं। जैसे एक बार मैंने बताया था, इंग्लैंड में भक्तिवंदा मैनर में एक गुजराती व्यापारी हैं, तो मंदिर के लिए कुछ चाहिए था, मंदिर में बहुत प्रॉब्लम्स थे और मंदिर के मैनेजर्स लोगों से बोल रहे थे कि प्लीज कृपया दीजिए, हमारा भक्तिवंदा मैनर तो पूरा बंद ही होने वाला था एक समय, और एक एक्सेस रोड चाहिए था हमको मंदिर के लिए। तो आसपास पे एक गांव है, गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में से रास्ता नहीं आएगा, आप चाहे तो पीछे का जो जंगल का रास्ता है हाईवे तक का वो खरीद लो पूरा। मतलब केवल भक्तों की कार आने के लिए एक रास्ता बनाने के लिए वो गांव वालों ने सोचा कि इनके पास क्या पैसा आएगा। तो मैनर से बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलाए गए फंड रेजिंग के लिए। तो ये व्यापारी, उसने सोचा कि मेरे पास तो पैसा बहुत कम है, मतलब आई एम डाउन टू माई लास्ट लिक्विड कैश, कुछ 2-3 हजार पाउंड हो सकते हैं, बहुत सारा माल लिया है लेकिन बेचा नहीं है, मेरा पैसा किसके पास अटका हुआ है। लेकिन क्यों मालूम नहीं, उस समय राधा गोकुलान जी के सामने उसने मन में एक प्रार्थना की कि भगवान, वैसे गरजमंद तो मैं हूं, वैसे आवश्यकता मुझे है, लेकिन आप अभी ये लीला दिखा रहे हैं कि आप गरजमंद है कि नहीं, भगवान का मंदिर जाएगा, भगवान की सेवा पूजा में अवरोध हो जाएगा। तो भगवान की एक लीला है कि भगवान भक्तों से कहते हैं कि अरे मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि घर जाकर अगर मुझे 1,000 पाउंड कैश मिली मैं सारी आपको दे दूंगा। लेकिन एक बात है, बोले मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो रहा है। उसने कहा मैंने ईमानदार से बोल दिया ऐसे कि मुझे आपकी सेवा करने की इच्छा है लेकिन ये बिजनेस बहुत खराब हो रहा है। तो कुछ देखो हो सकता है क्या। और वो गए, उतनी कैश लेके दे दी और बोले 6 महीने की बात है, मैं देख रहा हूं कि मेरे ही लाइन के बाकी बिजनेसमैन लोगों को वही प्रॉब्लम हो रहे हैं जो बाकी सारे ट्रेड इंडस्ट्री को हो रहे हैं, लेकिन मेरा कैसे ना कैसे चल रहा है ठीक से। तो अर्थात उसके बाद तो उन्होंने एकदम सीरियस भक्त बन गए वो, और दीक्षा ले ली और मतलब आगे उनकी अधिक अधिक प्रगति भी होती जा रही है। कहने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक अति निष्ठावान मित्र है, अति निष्ठावान, एक्सट्रीमली लॉयल। लेकिन बात ऐसी है कि हम कहते हैं कि वो हमारे मित्र हैं तो सबके साथ वो मैत्री क्यों नहीं करते, क्योंकि कई लोग उनके सामने मित्र के रूप में नहीं आते। कोई व्यापार, कोई लेन देन, ये भावना से आते हैं। मतलब उस दिन हम चर्चा कर रहे थे हमारे आध्यात्मिक वर्ग में कि श्री कृष्ण प्रेमी है कि श्री कृष्ण गुस्से वाले हैं कि श्री कृष्ण क्रोधी हैं कि श्री कृष्ण कैसे व्यक्ति है वो। तो एक भक्त ने ये मुद्दा उपस्थित किया कि कृष्णा नेवर सेज आई लव, आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, कि मैं ऐसे करता हूं, ऐसे नहीं बोलते वो। अगर ऐसे कोई करते थे, ऐसे बोलते थे तो अच्छा होता था एक दृष्टि से, लेकिन भगवान जो बोलते हैं ना वो बड़ा डेंजरस बोलते हैं। वो क्या है वो डेंजरस वाक्य? आई रेसिप्रोकेट। बोले ये नहीं कि मैं आपसे, आपने मुझे एक केक बना के दिया तो मैं आपसे खुश हूं, या आपने आज मुझे एक सूखा फल दिया तो मैं आपसे नाराज हूं। नहीं, भगवान कृष्ण तो बहुत, मतलब ये बहुत बुद्धिमत्ता की बात है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, सिंपल गीता का एक श्लोक है। ये यथा मतलब जिस प्रकार से, यथा तो तथा आएगा ना, यथा तथा बोलते हैं, तो ये यथा जो जिस प्रकार से मेरे समक्ष आता है, ताम्स उस ओ उन व्यक्तियों के लिए, प्लूरल में ताम्स, तथा एव जैसे जो मेरे सामने आता है, बिल्कुल एक ग्राम या एक कण भर भी यहां है वहां नहीं, ताम्स तथा एव भजामी हम। तो ये एक प्रकार से मुसीबत हो गई कि हम कहेंगे भगवान ऐसे क्यों करते हैं। बोले आपने क्या कहा था, हाँ मतलब प्रॉब्लम मुझ में है, अगर मैं एक फ्रेंड के रूप में जाता हूं तो मेरे लिए फ्रेंड है वो, अगर मैं सोचता हूं कि इसको तो मारना चाहिए तो भगवान मुझे मारने लगते हैं। तो भगवान कहते कि ना तो मुझ में, एक तो प्रभुपाद का पर्पस है कि भगवान पुतना से द्वेष नहीं करते और गोपियों से प्रेम नहीं करते। और हम कहेंगे अरे ऐसे कैसे, ये तो दिखाई रहे पुतना को तो मार दिया और गोपियों के साथ तो डांस किया, नृत्य किया। बोले नहीं, कृष्णा क्लैरिफाइड, आई ओनली रेसिप्रोकेट। जैसे आईना है ना, मिरर, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। अगर हम आईने के सामने हमारी सूरत देखते हैं और बोलते हैं कि ये ऐसे क्या चेहरा है, तो चाइना बोलेगा ये मैं क्या करूं उसमें, जो सामने दिखाई दिया मैं बता रहा हूं उसको खाली। आप कहेंगे ये कैसे दांत दिख रहे हैं, शी, वो बोलेगा उसमें मेरा दोष है, उसमें कुछ आप ठीक से साफ करो तो मैं ठीक से चमकीले दांत दिखाऊंगा, उसमें मेरा क्या है। तो ये एक मेजर पॉइंट है, कृष्णा ओनली रेसिप्रोकेट्स। एक व्यक्ति चम्मच लेकर, आज चम्मच बहुत बार आ रहा है, चम्मच लेकर, एक व्यक्ति एक गिलास लेकर, एक व्यक्ति एक टैंकर लेकर, चम्मच, गिलास और बड़ा ट्रक टैंकर, तीनों जाकर समुद्र के पास गए और बोले पानी चाहिए। उन्होंने कहा ले लो, तो समुद्र ने सबको, तीनों को पानी दे दिया और तीनों ने क्या अपना पानी लोगों को दिखाया, कितना पानी है, बोले बस इतना सही, एक गिलास थोड़ा ज्यादा है, और ये टैंकर इतना क्यों? क्यों? क्योंकि जो पात्र लेके गए थे वो छोटे हैं, है कि नहीं? तो हम अगर भगवान के सामने एक छोटा चम्मच लेके जाएंगे, अगर कहेंगे कृपा दे दो, कृपा उतनी मिल जाएगी। एक गिलास लेके जाएंगे तो उतनी कृपा मिलेगी। एक टैंकर लेके जाएंगे और कहेंगे कि वहां का खत्म हो गया। बोला नहीं, वो तो समुद्र है, ऐसे तो लाखों टैंकर जाएंगे उसमें से। तो फिर भी ये उदाहरण ठीक नहीं है। भगवान की कृपा जो है ये ऐसे भौतिक जगत के अनंत कोटि समुद्र से भी ज्यादा अनंत कोटि बड़ी है, इसलिए तो वो अनलिमिटेड है। तो जो व्यक्ति इतना रिसोर्सफुल है, इतना उसके पास साधन इतने प्रचुर मात्रा में है, वो क्यों किसी एक को एक्स्ट्रा देगा या क्यों किसी एक से कुछ ले लेगा? कभी ये गलत धारणा मन में नहीं आनी चाहिए, अर्थात नहीं आनी चाहिए। हम सुनते हैं, लेकिन हमारा अपना कृपण मन, मन ही हमारा कृपण है। वैसे व्यक्ति ब्राह्मण कृपण नहीं होता, उसका मन कृपण या ब्राह्मण होता है। जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन अपने भक्तों से 7 प्रहर लगभग 21 घंटे, जो महाप्रभु हमेशा विनीत नम्र दास दास दासानुदास भावना में थे, अचानक ईश्वरता उनके मतलब ईश्वर भाव प्रकट होने लगा और सब भक्तों ने देखा, भोग चाहिए, अभिषेक कराओ। और उसके बाद महाप्रभु स्वयं एक ऊंचे आसन पर बैठ गए और फिर भक्तों से पूछने लगे, बोलो क्या चाहिए। तो वहां सब महाप्रभु के प्रेमी भक्त थे, किसी ने कहा प्रेम भक्ति दीजिए, दे दी। किसी ने कहा मेरी पत्नी को भक्त बनाइए, वो इतना साथ नहीं देती मुझे, बोला ठीक है। किसी ने कहा मेरे चाचा को भक्त बनाओ, किसी ने कहा मुझे आपके वैभव के बारे में ज्ञान चाहिए। जो मांगा जिसने मांगा ले लिया। तो चेतन लीला में हम इस प्रकरण में देखते हैं कि भगवान कभी किसी को देने में कभी अपना एक हाथ पीछे नहीं रखते। इसीलिए भगवान की सराहना करना, उनकी स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, ये उनकी चाटुकारिता नहीं है, ये फ्लैटरी नहीं है, ये हमारा, ये हमारी संविधानात्मक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, मूल स्थिति, ओरिजिनल स्थिति हमारी वही है। हम केवल उस ओरिजिनल इमोशन को जब यहां पर उसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ इसमें से कुछ मिला नहीं मुझे। जैसे अगर अच्छा बीज है लेकिन वो भूमि अच्छी नहीं है और उसमें हमने उस बीज को बोया और पानी दे दे के थक गए, बोले कुछ नहीं आता यहां पर, ये बीज बोगस है। नहीं, तो बीज में कोई खराबी नहीं है, पानी भी खराब नहीं है, वो भूमि जो है उसका मेन प्रॉब्लम है। तो वैसे ये जो इमोशन, किसी की स्तुति करना, किसी के बारे में अच्छा कहना, दूसरे श्लोक में ये जो श्लोक है जिसमें भगवान इन चारों का वर्णन करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो लोग मेरे पास आते हैं ना, ये बड़े उदार हैं, बड़े उदार मन के हैं। ये कैसा ऑपोजिट है? उदार वो होता है जो कुछ देता है। अगर किसी के पास गए बेटे 50 रुपये उधार मिलेंगे, अरे 50 क्यों, 500 ले लो, आप कहेंगे बड़ी वाह, ये तो बड़ा दिलदार आदमी है। तो दिलदार वो होता है जो देता है। यहां पर भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास आते हैं ना, इसलिए वो बड़े उदार है। आई रिमेंबर, मैं जानता हूं, फर्स्ट दिन मैंने इस वाक्य को पढ़ा था, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये भगवान तो थोड़ा ज्यादा ही हमारी स्तुति कर रहे हैं कि ठीक है आप मेरे पास आ गए, आप कितने उदार हैं। तो इतने 20 साल गए उसमें समझने में, ये छोटा सा रहस्य। आचार्य हमारे समझाते हैं कि भगवान सोचते हैं कि ये लोग बेचारे जो आर्त है, इंजर्ड है, एक्सीडेंट केस है, कैजुअल्टी है, हार्ट पेशेंट है, लिवर पेशेंट है, कैंसर हो गया है, जो भी कुछ हो गया है, उसके सामने सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? ये मेरा प्रॉब्लम, मेरा सिकनेस है कि नहीं। आर्त जो अर्थार्थी है उसको कहीं भी 24 घंटे मन में यही सोचना है कि पैसा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है। तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, उसके मन में भी ये जिज्ञासा है कि क्या हो सकता है, क्या भक्ति है, क्या करते हैं ये लोग, क्यों इतना जाप करते हैं। एक ज्ञानी को थोड़ा सा भगवान एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते हैं कि ये थोड़ा स्पेशल है, लेकिन ये 3 खास करके उनके सामने भक्ति, जीवन का उद्देश्य क्या है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, बोले फिलोसफी छोड़ दो, पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास आते हैं और वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व